पाठ 31 लालच। मैंने शैतान और उसके दूतों को सलाह मशविरा करते देखा। उसने अपने दूतों को कहला भेजा कि विशेषकर जो लोग यीशु के आने की तैयारी कर रहे हैं और सब आज्ञाओं को मानते हैं उनके पास जाओ। शैतान ने अपने दूतों से कहा कि सब कलीसिया सो रहे हैं, वो अपनी शक्ति और झूठा आश्चर्य कर्म दिखाकर सबको वश में करेगा, परंतु जो लोग सप्त मानते हैं उनको हम घृणा करते हैं। वे लगातार हमारे विरुद्ध में काम करते हैं और हमारे लोगों को भी छीन कर ले रहे हैं। उन्हें वे ईश्वर का सप्त, जिसे हम घृणा करते हैं, मनवा रहे हैं। जमींदारों और पैसे वालों के पास जाकर उनकी चिंताओं को इसी में डुबाए रखो। यदि तुम लोग ऐसा कर सकोगे तो समझो हमने उन्हें भी अपने अधीन में कर लिया है। उनको जो पसंद है वे उसे माने। तुम सिर्फ पैसे का लालच ज्यादा से ज्यादा उनके मन में डालो, ताकि ईश्वर का राज्य को फैलाने के लिए मदद न करें, क्योंकि सुसमाचार के फैलने से हमें घृणा होती है। उनके सामने दुनिया को बहुत ही आकर्षक बना दो, जिससे कि वे इस पर दीवाना हो जाएं और इसकी पूजा करने लगे। जितना संभव हो हम जरिया को अपने पास रखें। यदि उनके पास अधिक जायदाद हो तो अधिक धर्म प्रचार कर हमारा राज्य को तहस नहस कर हमारे सदस्यों को भी छीन लेंगे। जब वे विभिन्न जगहों में सभा चलाते हैं तो हम खतरे में पड़ जाते हैं। उस वक्त तुम लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। जितना भी गड़बड़ करने सकते हो करो। उनका प्रेम एक दूसरे पर है, उसे गड़बड़ कर दो, मनमुटाव करो। उनके प्रचारक और पादरियों को निरुत्साह कर डालो, क्योंकि हम उनसे घृणा करते हैं। उनके पास जो तार्किक बहाना है उसे खोलने मत दो, अन्यथा इसके खुलने से विश्वास करना आसान हो जाएगा। यथासंभव उनके पैसों को प्रचार काम में मत लगाकर अपने ही पास रखने बोलो, जिससे प्रचारक पादरियों के पास पैसे का अभाव होगा और धर्म सभा चलाना मुश्किल होगा। वे हताश निराश होकर भाग जाएंगे। हर इंच पर मलयुद्ध करो। पैसे का लालच और दुनिया की मोह माया में डालो, क्योंकि धन संपत्ति से ही चरित्र गठन किया जा सकता है। जब उनके मन में ये भावनाएं डालेंगे तो उद्धार पाने और अनुग्रह से मुक्ति पाने की सोच से वे दूर रहेंगे। उनके चारों ओर दुनियादारी के सुख विलासों को भरकर हंसा दो, तब निश्चय ये हमारे हो जाएंगे। सिर्फ उनको ही हमें वश में नहीं करना है, परंतु उनका प्रभाव दूसरों को स्वर्ग ले जाने का है, उसे भी हमें रोकना है। जो लोग उन पर प्रभाव डालना चाहेंगे तो उनके बीच में कुड़कुड़ाहट पैदा करो, जिससे वे कम हो जाएं। मैंने देखा कि शैतान ने अपनी योजना का उचित उपयोग किया। जब ईश्वर के लोगों ने अपनी सभा की तो शैतान के दूतों को अपने अपने कर्तव्य याद आए। वे वहां पर जाकर ईश्वर के कामों में बाधा पहुंचाने लगे। वह लगातार ईश्वर के लोगों के बीच काम कर किसी को इधर तो किसी को उधर भटकाने लगा। इस प्रकार भाइयों और बहनों के बीच गड़बड़ी पैदा करने लगा। यदि वे अस्थिर होकर स्वार्थी और लोभी बनते हैं तो शैतान उनका पक्ष लेकर बहुत खुश होता है। वह अपनी सारी शक्ति से उनके बीच में अनबन उत्पन्न कर बैरता का पाप में डाल देता है, जिसका उन्हें पता नहीं लगता है। जब ईश्वर की सच्चाई की ज्योति आकर कुछ देर के लिए उनके लालच और स्वार्थ को हटा देता है, फिर भी वे उसको पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं, तो वे बचाव के अधीन से बाहर हो जाते हैं। उसी समय फिर शैतान आकर उनके सब अच्छे गुणों जैसे कृपा और अनुग्रह और क्षमा को उठा ले जाता है। इसके बाद वे सोचते हैं कि मेल मिलाप होना, एक दूसरे को क्षमा करना हमसे नहीं होगा, बोलते हैं। वे दूसरों की भलाई करने में थक जाते हैं और यीशु ने उनके लिए इतना बड़ा बलिदान किया है उसे भी भूल जाते हैं। शैतान का कब्जा से छुड़ाने और आशा रहित दुख से उबरकर मुक्ति देने का काम को भूल जाते हैं।
शैतान ने यहूदा के लालची चरित्र का फायदा उठाते हुए मरियम का यीशु के पांवों में बहुमूल्य इत्र डालकर पहुंचने से उसे कुड़कुड़ाया। यहूदा ने इसे व्यर्थ खर्च कहा। यदि इसे बेचा जाता तो गरीबों की भी मदद होती। वह तो गरीबों की परवाह नहीं करता था, पर चाहता था कि यीशु के लिए चंदा किया जाता तो यहूदा की थैली में ये रकम आते। यहूदा ने तो लालचवश सिर्फ 30 चांदी के टुकड़ों से यीशु को बेचा। मैंने कुछ लोगों को यहूदा जैसा देखा जो अपने प्रभु यीशु के आने की बाट देख रहे हैं।
शैतान ने उन्हें अपने वश में कर लिया है, पर वे जानते नहीं। एक छोटा लालच और स्वार्थीपन को ईश्वर ग्रहण नहीं करेगा। जो ऐसे लोग हैं उनसे ईश्वर घृणा करता है और उनकी प्रार्थनाओं की भी उपेक्षा करता है। जब शैतान को ये मालूम है कि उसका समय थोड़ा ही है, तो वो लोगों को स्वार्थी बनाने में लगा है। वह अधिक से अधिक लोगों को स्वार्थी लोभी बनाना चाहता है। जब शैतान लोगों को स्वार्थ और लालच से मरा हुआ देखता है, तो मन में बहुत खुश होता है। यदि मनुष्यों की आंखें खोली जाती तो वे देख सकते कि शैतान अपना नरकीय विजय यानी चालाकी और धूर्तता से अपनी बातों को मनवाकर उन्हें अपना जाल में फंसाकर खुशी मना रहा है। तब शैतान और उसके दूतगण लोगों के लालची काम के फलों को यीशु के पास ले जाकर घृणा से कहते हैं कि क्या आपके चेले हैं? क्या वे रूपांतर होकर स्वर्ग जाने को तैयार हैं? शैतान उनके पथभ्रष्ट को बाइबल का मार्ग से तुलना करता है, उन पदस्थलों को दिखाता है जिसमें ऐसा करना पाप है बताता है, और उन्हें स्वर्गदूतों को चिढ़ाने के लिए उसके पास हाजिर करवाता है। वह कहता है कि क्या ये लोग ख्रीष्ट और उसके वचन के मानने वाले हैं? यीशु के बलिदान और उद्धार का क्या यही लोग फल हैं? स्वर्गदूत घबराकर अपने मुंह फेर लेते हैं। ईश्वर चाहता है कि उसके लोग सदा भलाई के काम में लगे रहें, और जब वे उदार दिखाने में थक जाते हैं तो ईश्वर भी उनकी ओर से मुंह फेर लेता है। मैंने देखा कि ईश्वर के लोगों के चरित्र में थोड़ा भी स्वार्थ पाया जाता है तो वह उससे नाराज होता है, क्योंकि उनके लिए उसने अपना एक लौटा पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। फिर यीशु ने भी अपने प्राण का बलिदान कर छुड़ाने से वंचित न रहा। हर लोभी स्वार्थी व्यक्ति सत्य मार्ग से गिर जाएगा। जिस तरह से यहूदा इस्कारियोती ने अपना प्रभु को बेच डाला, उसी प्रकार वे अच्छा सिद्धांत, अच्छा काम और उदार चरित्र को जगत का थोड़ा लाभ के लिए बेचेंगे। इस तरह के सभी लोग ईश्वर के लोगों की गिनती में नहीं आएंगे। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, उनको अपनी सारी शक्ति से अच्छे सिद्धांतों को मानना होगा और दूसरों को मानने के लिए से उत्साहित करना होगा। स्वार्थ से अपनी आत्मा को कमजोर बनाने के बदले उदारता से भर देना चाहिए और एक दूसरे की भलाई करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार से स्वर्ग के सिद्धांतों से अधिक परिपूर्ण हो जाना चाहिए। यीशु को मेरे सम्मुख एक सिद्ध नमूने के रूप में दिखाया गया। उसका जीवन निस्वार्थ था और उसे अपने लिए फायदा उठाने वाला के रूप में नहीं जाना गया, परंतु उसने हमेशा परहित के लिए जीवन बिताया। आधारित वचन यूहन्ना 2:15, लूका 12:15, कुलुस्सियों 3:5-6।